यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बन चारी जमुना तेरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा गिरवन धारी जय यशोदानंदन भज जन रंजन जमुना तीरा बन चारी
जमुना तीरा बन चारी
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री राधा रास बिहारी मंदिर इस्कान जुहू में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में रविवार को आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद जो भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुख मंडल है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री भागवत है श्री कृष्णेरा अंग। चेतन महाप्रभु चेतन चरितमृत में लिखते हैं कविराज गोस्वामी, भागवत है श्री कृष्णेरा अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। तो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण और अपने भक्तों का प्रेम का आदान प्रदान है। भगवान का अंग है तो उसमें दसम स्कंद भगवान का मुखमंडल है मुस्कुराता हुआ। उसका दूसरा अध्याय जिसमें देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, इसको कहते हैं गर्भ स्तुति। दुनिया के अंदर गर्भ की निंदा की गई है, गर्भ की निंदा है, गर्भ गले कहते हैं, गर्भ में पड़ना बहुत खराब है, लेकिन भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी और शंकर जी कर रहे हैं। ये अध्याय में गर्भ स्तुति बहुत सुंदर अद्भुत गर्भ स्तुति है, वहां तक जब पहुंचे हैं। आज हमारा सत्संग का विषय है दसवां श्लोक, दसवां स्कंद दूसरा अध्याय दसवां श्लोक, और इस श्लोक को सुनने के लिए समझने के लिए हमको गोलोक चलना पड़ेगा। चलोगे? नहीं जाएगा कोई भी, सब घर जाएंगे यहां से क्योंकि ये कथा गोलोक में हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में है, देवकी और वसुदेव कंस के कारागृह में है। छह देवकी और वसुदेव के बच्चों का कंस ने हत्या कर दिया है, यहां तक हो चुका है। ये षड गर्भ, इसको कहते हैं षड गर्भ, वो कंस के द्वारा मारे जा चुके हैं। सातवें गर्भ में देवकी के उदर में संकृष्ण बलराम जी आए हैं जो भगवान के धाम हैं और भगवान के लिए आसन बनाने के लिए आए हैं। गर्भ भगवान अभी आने वाले हैं, वैसे भी शेष भगवान का आसन है। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को गोलोक धाम में अपने सामने बुलाया। मैंने सामने इसलिए कह रहा इस शब्द के ऊपर ध्यान देना, माया भगवान के सामने आने में लज्जित होती है, ये दूसरी बात ध्यान में रखना। ये भागवत के पहले स्कंद के सातवें अध्याय में प्रभुपाद लिखते हैं माया भगवान के सामने आने में लज्जित होती है, हमेशा माया भगवान के पीछे होती, भगवान के बैक में होती है, पीछे होती है, भगवान के पूर्ण वश में होती है। लेकिन ये भगवान के सामने आई, ये क्या योग माया, भगवान ने बुलाया और बुला के उनको दो काम बताए। कहा देवी भद्रा पहला काम ये करो कि ये जो संकृष्ण बलदेव ये रोहिणी का नित्य पुत्र है, इस वक्त मेरे आसन बनाने के लिए देवकी के उदर में गया है, इसको यहां से खींचकर जाके रोहिणी के उदर में स्थापित करो। बहुत मुश्किल काम है, देवी तो कहा कैसे होगा। बोला भद्र हो जाएगा, हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा, कृष्ण कह रहे हैं। बोला दूसरा क्या काम करना है। बोला मेरी अनुजा बनकर, अनुजा किसको कहते हैं, छोटी बहन को, मेरी अनुजा बनकर यशोदा के वहां प्रकट होना। तो ये दो काम भगवान श्री कृष्ण ने देवी को कहे, और फिर भगवान ने देवी को आशीर्वाद दिया कि ये दो काम करोगी तो लोग आपकी पूजा करेंगे, और कहां कहां भारत में आपकी आपके स्थान बनेंगे, वो कल का श्लोक है। आज के श्लोक में देवी की पूजा करेंगे, कौन करेंगे ये श्लोक हम पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कहां बात हो रही है, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण देवी को दो काम बता रहे हैं, और काम बताने के बाद आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आइए आशीर्वाद भगवान की देवी को इस श्लोक का पाठ करते हैं, ठीक है। अरच्यन्ति मनुष्याः त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवर प्रदा अरच्यन्ति मनुष्याः त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदा अरच्यन्ति मनुष्याः त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदा। अरच्यन्ति मनुष्याः त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरदाम्। अरच्यन्ते मनुष्याः त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। अरच्यन्ते मनुष्याः त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् सोपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। अरच्यन्ते मनुष्याः त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। सर्वजन्ते मनुष्याः त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। देव बोली बोली अरिष्यन्ते मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। मनुष्यानि मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपोपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदान चंद्रे मनुष्य स्वाम सर्व काम वरेश्वरिम बलि भी सर्व काम वर प्रदान अरिष्यन्ते मनुष्यास्त्वाम् काम वरेश्वरिम् धूपोपहार बलिभिः सर्व काम वर प्रदान अरिष्यन्ति अर्चिष्यन्ति का मतलब क्या होगा अर्चन करेंगे का मतलब पूजेंगे ठीक है कौन पूजेंगे मनुष्य पूजेंगे किसको पूजेंगे त्वाम देवी आपको पूजेंगे भगवान कहते हैं देवी आपको मनुष्य पूजेंगे क्यों पूजेंगे कैसे पूजेंगे बोला पूजेंगे क्यों क्योंकि आप सर्व काम वरेश्वरिम है सर्व काम मतलब सारी कामनाएं वर का मतलब आशीर्वाद देने वाली ईश्वरी का मतलब स्वामिनी सारे भौतिक कामनाओं की पूरी करने का वरदान और आशीर्वाद देने वाली आप स्वामिनी ईश्वरी हैं भाई मनुष्य क्यों आपको पूजेंगे हाँ क्यों पूजेंगे मनुष्य क्योंकि आप उनकी सब कामनाएं पूरी करने की आशीर्वाद देने की स्वामिनी हैं ठीक है कैसे पूजेंगे तो कहते हैं देखो तीसरी लाइन में क्या लिखा है कैसे पूजेंगे धूप अगरबत्ती अर्पण करेंगे फिर क्या लिखा है उपहार आपको कुछ भेंट चढ़ाएंगे उपहार देना का क्या उपहार क्या होता है कुछ फल लाएंगे कुछ चीजें उपहार में देंगे और बलि भी को क्या कहते हैं बलि के मतलब बलिदान देंगे ये बलि शब्द कहां से आया बलि महाराज से हमारी भाषा में बलि शब्द आया कहां से बलि महाराज से जिसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया तो वैसे बलि देने का मतलब है कि अपने आप को अर्पण करना है लेकिन लोग बकरे को अर्पण करते हैं इसका मतलब लोगों की बुद्धि बकरे जैसी है भाई अर्पण अपने आप को करना पड़े ना बलि का मतलब तो यह है कि अपने आप को अर्पण करना चाहिए बलि महाराज ने किसको अर्पण किया था अपने आप को भगवान को अर्पण किया ना तो बलि की परिभाषा तो ये है लेकिन हमने बलि की परिभाषा बदल दी है हम अपने बाप को अर्पण तो कर नहीं सकते तो फिर किसी और को पकड़ के अर्पण करते हैं तो ये बलि भी ठीक नहीं है और फिर तीसरी लाइन में क्या कहते हैं ये दो बार क्यों कह रहे हैं सर्व काम वर प्रदान सर्व काम सारी कामनाओं की वर का मतलब वरदान देने वाली प्रदान का मतलब देने वाली आप सब इच्छाओं का वरदान देने वाली हो कौन सी इच्छाएं ये काम शब्द दोनों में काम शब्द है ऊपर भी सर्व काम है नीचे भी सर्व काम है अब ये दो शब्दों को दो शब्द श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में एकदम शुरुआती यहां से करते हैं प्रभुपाद जी सर्व काम मतलब कामनाएं तो कामनाएं होती किसको है मनुष्य को होती है मनुष्य को कामनाएं होती हैं भक्तों को कामनाएं होती हैं क्या हा कौन सा श्लोक पढ़ेंगे भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतेव कामना है कोई भक्त को कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत तो कामना है किसको है तीन को तो कामना है ऐसा तो चेतना चरितमृत में साफ दिख रहा है कि नहीं भुक्ति मुक्ति सिद्धि भुक्ति का मतलब संसारी मनुष्य जो भोग चाहते हैं संसार में भोग चाहते हैं नहीं तो स्वर्ग में उससे ज्यादा भोग चाहते हैं ये हो गए भुक्ति मुक्ति का मतलब वो चाहते हैं कि भगवान से मिलके एक हो जाए वो मुक्ति चाहते हैं और तीसरे योगी वो क्या चाहते हैं सिद्धि चमत्कार दिखाने के लिए इन सबको कामनाएं हैं तो सर्व काम वाले ये सब इस लिस्ट में आ गए, सर्व काम वाले में आ गए ना। तो बाकी बच कौन गया? कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। तो अब इस श्लोक के शब्दों का अर्थ तो सबको आता है, सबने पढ़ा है, ठीक लग रहा है कि नहीं? अब श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़े। सामान्य लोग, सामान्य लोग किसके लिए प्रभुपाद ने लिखा है? मनुष्य, ये सामान्य लोग हो गए। तो दूसरे कौन से लोग होते हैं? तब आपको एकदम बोलना चाहिए, महात्मा नस्तुमाम पारथ देवीम प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमाव्ययम्। वो सामान्य मनुष्य नहीं होते, वो महात्मा होते हैं। कौन है महात्मा? जो देवी प्रकृति, अब देखो दो प्रकृति हो गई, एक माया प्रकृति जिससे काम मांगते हैं, वो एक देवी प्रकृति जिससे भक्ति मांगते हैं। हम ही तो, प्रभुपाद जी के एक तात्पर्य लिखा है, हम ही भी शुद्ध शक्ता है। दो प्रकार के, कल के श्लोक में आएगा, दो प्रकार के लोग हो गए, क्योंकि भगवान और साथ में माया, योग माया भी प्रकट हो गई। तो कुछ भगवान के भक्त हो गए, उनको वैष्णव कहते हैं, और कुछ शक्ति के भक्त हो गए, उनको शक्ता कहते हैं। तो दो प्रकार के भारत में, दो प्रकार के ये भक्त हैं। तीसरा सेवाइट है, एक शंकर का पूजने वालों को सेवाइट बोलते हैं, शक्ति के पूजने वालों को शक्ता कहते हैं, विष्णु को पूजने वाले को वैष्णव कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं हम भी शुद्ध शक्ता हैं, शुद्ध शक्ति के उपासक हैं, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र में हम भी भगवान की शक्ति राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं ना। वहां प्रभुपाद लिखे राधा रानी को प्रार्थना करें राधा कृष्ण की उपासना में, सीता को प्रार्थना करें सीताराम की उपासना में, लक्ष्मी नारायण को प्रार्थना करें लक्ष्मी नारायण की उपासना में। तो हम भी शक्ति की उपास, हम भी हैं तो अनुयायी राधा रानी के, हम भी शक्ति के उपासक, लेकिन शुद्ध शक्ति के। इसमें कामना कोई नहीं है। किसकी कामना नहीं है? संसार के भोग की। क्या कामना है? भगवान की सेवा की। तो प्रभुपाद ने सामान्य मनुष्य लिख के क्या लिख दिया? सामान्य मनुष्य क्यों लिखा? मनुष्य को सामान्य मनुष्य क्यों लिखा? इसका मतलब कुछ विशेष मनुष्य भी होंगे। तो विशेष मनुष्य कौन है? महात्मा। और महात्मा कौन है? जिन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ये उच्चारण करते हैं वो भी भगवान की अंतरंग शक्ति का शरण लेते हैं। ये महात्मा हो गए। देवीम प्रकृति में आश्रिता, आश्रित का मतलब शरण लेना। तो सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं सामान्य लोग, लोग लिखा है राजस्थान में कहते हैं लोग वो हैं जिनके पीछे लुगाई लगी हुई हो लुगाई की माना आती है, हाँ राजस्थान में लुगाई की माना आती है, पत्नी को बोलते हैं लुगाई, क्योंकि उनकी तो इच्छाएं होंगी ना, घर चलाना होगा तो इच्छाएं करनी पड़ेगी। ये कह किसी को लुगाई की माना आती है कि नहीं? है कोई राजस्थानी? हाँ ना, लोग के पीछे लगती है लुगाई, इसलिए हो जाते हैं लोग नहीं तो महात्मा है वैसे नहीं, भाषा ऐसी है, मैं क्या कहता हूं, प्रभुपाद लिखा है ऐसा है। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके, पशुओं की बलि करके, ये काली को होती है सिर्फ, भद्र काली को पशुओं की बलि देते हैं। कौन से, पहले तो काम जिनके, जिनकी कामनाएं होती हैं वो कौन से गुण में आते हैं? रजोगुण। काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण के लोग हैं। और जो बलि देते हैं वो इससे एक स्तर नीचे के हैं। कौन से गुण के हो गए? तमोगुण के। कामना करता है वो रजोगुण का है, लेकिन बलि देता है वो तमोगुण का है, वो नीचे के गुण का स्तर हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं पशुओं की बलि, करके विविध सामग्री, विविध सामग्री किसके लिए शब्द है? बलि तो बलि भी हुआ, विविध सामग्री क्या है? उपहार। ये श्लोक में ऐसे कभी थोड़ा दो मिनट लगा के नीचे क्या शब्द है और श्लोक में क्या शब्द है उनका तालमेल मिलाया करो, तो आपको लगेगा कि हम समझ के पढ़ रहे हैं। सामग्री किसके लिए शब्द है? उपहार। उपहार बलि भी पशुओं की बलि और उपहार, और फिर क्या लिखा है? सामरी से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, अर्चयन्ति तुम्हारी अर्चना करेंगे, भव्य अर्चना करेंगे। वो भव्य अर्चना में भव्य शब्द कहां से कैसे आ गया? धूप आदि भी ही। तो वो भव्य मतलब जो लोग देखें कि धुआं बहुत उड़ रहा है तो ये पूजा करेंगे। ये पहली लाइन पूरी होगी। क्यों पूजा करेंगे? प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं, काम सर्व काम को श्री प्रभुपाद ने लिखा है भौतिक इच्छाएं। सर्व काम का मतलब सारी कामनाएं। किस चीज की कामना है? भौतिक भोग की कामना। सब भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वपरि हो, सर्वपरि हो सबसे ऊपर हो। ये कौन सा शब्द है सर्वपरि हो? सर्वेश्वरिम, सर्वेश्वरिम। आप सर्वेश्वरी हो, लोग आपकी पूजा करेंगे। अगर भक्त पूजा करें तो काहे के लिए करेंगे? भक्तों ने कभी पूजा की है देवी की? हाँ, उदाहरण है कोई? गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, क्यों? कुछ भौतिक इच्छा चाहिए थी? क्या मांगती थी? नंद सुतः पति में देहिम, हमारे को नंद कुमार कृष्ण पति के रूप में मिले। ये भौतिक इच्छा है? हाँ, कृष्ण मिले हैं पति के रूप में, ये भौतिक इच्छा है क्या? नहीं है ना। और कहीं देवी की पूजा हुई है? द्वारकावासियों ने की थी जब भगवान श्री कृष्ण समंतक मणि को ढूंढने के लिए गए थे और 28 दिन तक नहीं आए, तो देवी की पूजा कर रहे थे कि कृष्ण हमको वापस तत्काल मिले, और जिस दिन पूजा पूरी हुई उस दिन कृष्ण प्रकट होकर वापस आ गए जामवती और समंतक मणि को लेकर। श्री प्रभुपाद जी को एक बार कुछ लोग देवी के मंदिर वाले बुलाने के लिए आए कि हमारे मंदिर में आइए। प्रभुपाद ने कहा चलो चलते हैं। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी देवी के मंदिर में जाएंगे? बोला क्यों? वो स्वामिनी है ना इस संसार की, तो जाना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे करना जैसे मैं करूंगा। तो प्रभुपाद ने जाके प्रणाम कैसे किया? हम यहां राधा रास बिहारी को प्रणाम कैसे करते हैं? हमारा दिल राधा रास बिहारी की तरफ होता है। दिल के ऊपर क्या होता है? जेब। आदमी कितने होशियार है, जेब यहीं रखा है जहां दिल है, क्योंकि जो सबसे प्यारी चीज है वो यहां रखते हैं। इसका मतलब है कि वाम भाग से करते हैं प्रणाम, है ना, हम अपने लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद ने देवी को प्रणाम बिल्कुल इसके उल्टा सीधे हाथ की तरफ से किया, मतलब उस तरफ से किया, समझे? तो भक्तों ने भी ऐसे प्रणाम किया। प्रभुपाद जी वहां बैठे, थोड़ी देर कथा किया, सत्संग किया। अब क्या सत्संग किया मुझे याद नहीं है, लेकिन सत्संग करना कैसे चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। कहना चाहिए कि आप अगर देवी के मंदिर में जाते हो और पूजा प्रतिष्ठा करते हो तो आपको क्या मांगना चाहिए? हम हैं तो इस संसार में ना भाई, आप इस संसार में रह रहे हो कि नहीं रहे हो? तो संसार की स्वामिनी तो है कि नहीं है देवी? तो इस संसार को क्या क्या कहा गया है? जेल खाना। क्या कहा गया? कारागृह है। और इसकी अधिष्ठात्री देवी जेल सुप्रिटेंडेंट कौन है? तो आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए उसको कि हे देवी हमको यहां जेल से मुक्त करो, हमको श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति में बाधा विघन नहीं हो, हमको यहाँ से मुक्त करो। ये प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप कहो कि देवी हमको जेल में सुविधा दो, मोबाइल की सुविधा दो, टेलीविजन की सुविधा दो, भोजन हमारा घर से आना चाहिए, अगर ये मांगोगे तो फिर हो गए कामे, तो फिर हो गए सर्व काम वाले। और अगर ये मांग लिया कि यहां से मुक्त करो तो कोई आपत्ति नहीं, ये मांगने में कोई खराबी नहीं है। प्रभुपा जी कभी कहा करते थे, तो मैं उसको पूरा कर लूं, तो जब बाहर वापस आए सब मिलके, तो सबने कहा प्रभुपा जी आपने सीधे तरफ से इनको क्यों प्रणाम किया? बोला वो भी शक्ति है, हम भी शक्ति हैं। भाई भगवान देवी भी शक्ति है, हम भी शक्ति हैं, तो शक्ति शक्ति को प्रणाम राइट साइड से करता है, लेकिन शक्ति शक्तिमान को प्रणाम लेफ्ट साइड से करता है। इसलिए आप देखिए राजा रानी कृष्ण के कौन से तरफ है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। पंच तत्व का, पंच तत्व तो सब जानते हैं ना, पंच तत्व का ध्यान करके देखें बीच में कौन खड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु के सीधे हाथ में कौन है, नित्यानंद, क्योंकि विष्णु वो बलराम है तो सीधे हाथ पे है। उसके बाद कौन है सीधे हाथ पे, अद्वैत आचार्य कौन है, सदाशिव है तो सीधे हाथ पे है, विष्णु है। और लेफ्ट साइड में कौन है, क्योंकि शक्ति है राजा रानी अंतरंग शक्ति है, और उसके लेफ्ट साइड में और कौन है, वो जीव शक्ति है, नारद जी है, जीव शक्ति है। तो शक्ति कहां होती है, लेफ्ट साइड में। हम भगवान की शक्ति है, इसलिए हमारा प्रणाम लेफ्ट साइड से होना चाहिए। ऐसे नीति शास्त्रों में लिखा है सामने से प्रणाम करना, मतलब सर सीधा भगवान के चरणों की तरफ हो, या राइट साइड से करना सीधे हाथ की तरफ से करना, या पीछे से करने से पुण्य क्षीण होते हैं। केवल वाम भाग से करना, लोगों को पता नहीं है, देवी को प्रणाम सीधे तरफ से करना, कभी जाना है प्रणाम करना चाहिए लेकिन सीधे तरफ से करना चाहिए। और प्रार्थना क्या करनी चाहिए, वो ब्रह्म संहिता से पढ़ लो, सृष्टि स्थिति प्रलय ये पूरा है ना, विभर्ति दुर्गा है, प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की हुई है, करने में कोई आपत्ति नहीं है। मांगना नहीं चाहिए भोग संसार का, ये इसलिए यहां तक अनुवाद पढ़ लिया, ठीक है अनुवाद समझ में आया, एक बार फिर पढ़ लू, आप हमारे साथ पढ़ लीजिए। सामान्य लोग पशुओं की बलि, पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। ये भगवान का आशीर्वाद है देवी को, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य कौन से शब्द के ऊपर है, सर्व काम के ऊपर। तो एकदम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य शुरू होता है भगवत गीता के एक श्लोक से, वो श्लोक है सातवें अध्याय का 20वां श्लोक। और श्रील प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, जैसे कि भगवत गीता के 7:20 में कहा गया है, क्या कहा गया है, कामेश कामेश, मेरे को देखने दो शब्द शुरू हो जाए ना, कामेश तैर तैर, कामेश तैर तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामेश जिनकी कामनाएं हैं, तैस तैस मतलब जैसे बहुत सारी, ये वो जैसी तैसी सब कामनाएं हैं, उसके लिए वो मेरे पास नहीं आते हैं, देवता के पास जाते हैं। तो भगवान के पास कामना के लिए जाना चाहिए कि नहीं, इसी सातवें अध्याय में एक श्लोक है कि नहीं, कौन सा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतेनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। ये क्या है, ये भक्त नहीं है, ये सुकृत है, इनका काम अच्छा है कि भगवान के पास मांगने के लिए गए हैं और भगवान देते हैं। भाई ध्रुव महाराज को राज क्यों दे दिया, भक्त था, बोला नहीं दिया तो लोग फिर कहेंगे भगवान के पास जाओ कुछ देते तो है नहीं, इसलिए कुछ देना तो चाहिए। लेकिन भगवान के और देवता के देने में अंतर क्या है, भगवान देते हैं लेकिन देने से पहले हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं, वो चीज हम भोग के लिए नहीं लगाते, वो देने से पहले हृदय को शुद्ध कर देते हैं। और तभी देते हैं जब हमारे हित के लिए, नहीं तो नहीं देते। एक उदाहरण दें, देवता की पूजा और भगवान की पूजा में कितना अंतर है, देवता के देने में और भगवान के देने में कितना अंतर है। एक बाप है, उसका बेटा है, जनवरी का महीना है और दिल्ली की ठंड पड़ रही है, बच्चे को खांसी है, नाक से पानी बह रहा है, बच्चा 50 का नोट ले जाके आइसक्रीम पार्लर के पास कहे आइसक्रीम दो, वो देगा कि नहीं देगा? हाँ, वो ये सोचेगा कि इसका जुकाम खराब हो के नमूनिया हो जाएगी, ये बीमार हो जाएगा, उसको चिंता है? वो देगा कि नहीं देगा? बस देवता की पूजा करो, जो सामग्री दो उसके बदले में माल मिलेगा, चाहे आपका लाभ हो या ना हो। अब वही बच्चा है, अपने बाप को कहता है आइसक्रीम खिलाओ, बाप खिलाएगा? क्या बोलेगा? कड़वी दवा पियो, आइसक्रीम नहीं मिलेगी। हाँ, खारी दवा पीनी पड़ेगी, सुई लगानी पड़ेगी। तो क्या आइसक्रीम वाला ज्यादा प्रेम करता है बच्चे से कि बाप ज्यादा प्रेम करता है? लेकिन देता नहीं आइसक्रीम। लेकिन मई जून आएगा तो पूरा फ्रिज भर के रखेगा, बोला दबा के खाओ क्योंकि अब तुम ठीक हो गए हो। तो हमारे को जब तक भौतिक रोग है तब तक हमारी इच्छाएं भगवान नहीं देता है, लेकिन देने के प्रोसेस में देते देते हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है। फिर वो देता भी है तो हम अपने भोग के लिए नहीं उसको उपयोग करते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो ये दोनों में के देने में अंतर है। देते दोनों है लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा जो भौतिक कामनाओं से बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं कि भौतिक हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, वो किसके पास जाते हैं? जहां से जल्दी में इच्छा पूरी होती है। तो उनका क्या कम हो गया है? हृत ज्ञानाह, इसका मतलब क्या? उनका ज्ञान चोरी हो गया है। हृत का मतलब चोरी होना। तो उनके लिए दूसरा शब्द क्या है भगवद गीता में? अल्प मेधसा। अल्प का मतलब थोड़ा, मेधा का मतलब खोपरी में बुद्धि थोड़ी कम है। हाँ, वो जाते हैं देवता के पास। भाई कम बुद्धि क्यों है देवता के पास जाने वाले के लिए? क्योंकि वो मांगते हैं जब तक जीते हैं तब तक सुख मिलता है। उनका दिया, देवता का दिया हुआ वरदान शरीर के साथ समाप्त होता है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये उनको पता ही नहीं है ना, तो इसलिए कम बुद्धि वाले हैं। वो शरीर के सुख की ही बात में, एक एक शब्द में कहा जाए देव पूजा संसार सुख। जिसको संसार में सुख चाहिए वो देवता की पूजा करे, और जिसको भगवान से प्रेम करके भगवान की भक्ति करनी है वो भगवान की पूजा करे, जिसको भगवान के धाम जाना है। तो दोनों में अंतर है। ये अकल वाले श्लोक में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये शब्द आएंगे कि जिनको अध्यात्मिक उन्नति करके आत्मा और परमात्मा का आपस में संबंध समझना है, भगवत धाम जाना है, वो तो करेंगे भक्ति, और जिनको भौतिक सुख चाहिए वो देवता की पूजा करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यहां लिख रहे हैं, जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं। विकृत का मतलब क्या है? तो इसका उल्टा शब्द क्या है? संस्कृत। विकृत संस्कृति, हमारे विकार होते हैं इसलिए संस्कार करने पड़ते हैं। संस्कार करने का मतलब सुधारना और विकार का मतलब बिगड़ना। तो लोगों के मन क्या हो गया है? मन को भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं, मन विकृत हो चुके हैं। ऐसा क्यों बोले? मन कहां शांत, मन कहां शांत होगा बोलो? बिगड़ा हुआ मन ये विकृत हो गया भौतिक इच्छाओं से। तो संस्कृत मन किसको कहते हैं? जो चीज जिसकी है, जहां से निकली है वहां जाएगी तभी सुकृत होके शांति पाएगी। पहला ये सिद्धांत है। जैसे पत्थर है, मिट्टी है, वो आकाश में फेंको कहाँ आएगी, वापस धरती पे आएगी कि नहीं आएगी? पानी कहीं भी गिराओ समुद्र की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि समुद्र का अंश है, मिट्टी धरती का अंश है। आग जलाओ उसकी लौ कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, सूर्य का अंश है। ऐसे मन के लिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं दसवें अध्याय में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मी, इंद्रियों में मन मेरी विभूति है, वो केवल विश्राम पाएगी जब मेरे चरणों में लगेगा। तो विकृत मन का मतलब है भौतिक इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ मन विकृत है। और फिर संस्कृत मन कौन सा है? जो भगवान के मय्यासक्त मनहा पारथ, जिसका मन मुझ में आसक्त है। ये सातवें अध्याय का पहला श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है पढ़िए, मय्यासक्त मनहा पारथ योगम युञ्जम मदाश्रय असंक्षम समग्रम माम यथा ज्ञासी तत्सुनो। भगवान कहते हैं मुझे जानोगे जैसे पूर्ण रूप से वो सुनो। तो भगवान को जानने के लिए मन को क्या करना पड़ेगा? संस्कृत। और संस्कृत करने के क्या करने पर? मन भगवान में आसक्त होना चाहिए। तो ये कौन सा मन हो गया? संस्कृत मन। और विकृत मन कौन सा है? भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ मन। तो मन की दो स्थितियां हो गई ना। जो जीव भूत है वो उसका मन विकृत है, और जो ब्रह्म भूत है उसका मन संस्कृत है। दो प्रकार के प्राणी हैं, एक को कहते हैं जीव भूत, वो है सामान्य मनुष्य, और दूसरे हैं ब्रह्म भूत, वो है महात्मा। तो दो विशेष, ये दो विशेषता हैं, दो प्रकार के भूतों का वर्णन है, जीव भूत और ब्रह्म भूत। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, उनको कोई इच्छा नहीं है। और जीव भूत कौन सा है? सारी इच्छाओं से भरा हुआ, जिसका मन विकृत है। तो कौन सा मन हमारे को बनाना चाहिए? संस्कृत मन, भगवान कृष्ण में आसक्त मन, मन भगवान में लगा रहना चाहिए। भगवान ने कुछ नहीं मांगा है, दो ही चीजें मांगी पूरी भगवत गीता में, मई एव मन आधस्त्व मई बुद्धिम निवेशय मय अर्पित मनो बुद्धिर, तेरा मन और बुद्धि मुझे दे दो। सूक्ष्म शरीर का ये अंग है और ये भगवान कहते हैं मुझ में लगाओ। ये यमदूत लेके किसको जाते हैं? शरीर को उठा के जाते हैं क्या? ये तो हमको उठाना पड़ता है। ले जाते हैं यमदूत तो हमारी जान छुड़ जाती है। लेने भी आते हैं तो ये शरीर यहीं छोड़ के जाते हैं। किसको ले जाते हैं? आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ। तो सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना हुआ है? मन बुद्धि का, अहंकार का। अगर मन और बुद्धि दोनों को भगवान को अर्पण किया तो यमदूत आएगा तो मन और बुद्धि में किसको देखेगा? भगवान को देखेगा, दूर से प्रणाम करके चला जाएगा, हाथ ही नहीं लगाएगा। तो विकृत मन वाले को पकड़ के जाता है, संस्कृत मन वाले को नहीं पकड़ता। तो विकृत मन, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इच्छाओं से विकृत हो चुके होते हैं, वे देवताओं के शरण में जाते हैं। वो देवताओं के शरण में जाते हैं। किसके शरण में जाना चाहिए? ये गीता का आखिरी श्लोक है, शरण में किसके जाना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम। एकम कह के भगवान ने बाकी सबकी शरण का निषेध कर दिया, और किसी की शरण में मत जाओ, सिर्फ मेरी शरण में जाओ। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सेल्फिश है, कहते मेरी पूजा करो, मन मेरे को दो, मेरे शरण में आओ, ऐसे क्यों बोलता है? तो हम उनसे पूछते हैं, तुम्हारा बेटा है, तुम क्या कहते हो कि तुम्हारी पूजा करे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करे कि पड़ोसी की करे? तो बोले भाई मेरा बेटा है तो मेरा पूछे। तो भाई भगवान कहता है तुम सब मेरे बेटे हो, मेरी बात का तो गलत बोल रहा है क्या? कि हम सब भगवान की संतान है कि नहीं? ये सामान्य लोगों को कहते हैं, लोग बहुत अड़ियल होते हैं तो उनको कहते हैं तुम क्या समझते हो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करे या किसी और की करे? हाँ, आपका क्या विचार है? क्या उत्तर क्या आएगा? हाँ, अरे मैं अपने मैं मेरी करे और किसी की करे? अरे तो भगवान जगत पति है तो सभी उसकी पत्नी है, उसी की सेवा करे, तो वो ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है? बोलो, हाँ सही कह रहा है गलत कह रहा है? तो हम कैसे कहेंगे कि वो तो सही बात कह रहा है, हमको सही समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी और की शरण में नहीं जाना चाहिए, शरण में एक भगवान की जाना चाहिए। इसलिए एक सूत्र है, प्रेम भगवान से करना चाहिए, व्यवहार संसार से करना चाहिए। व्यवहार सबसे करो, देवता रास्ते में आए तो प्रणाम करो, व्यवहार करो, लेकिन प्रेम भगवान से, शरण भगवान का, जिसका शरण लिया है उससे प्रेम करो और व्यवहार संसार से करो। हम कितने होशियार हैं, प्रेम करते हैं संसार से, व्यवहार करते हैं भगवान से। संडे के दिन आते हैं भगवान को दर्शन देने के लिए। हमारा फार्मूला उल्टा है, प्रेम संसार से और व्यवहार भगवान से। और होना क्या चाहिए, प्रेम भगवान से और व्यवहार संसार से। यह पहला सूत्र है, जिसने इस सूत्र को ठीक समझा उसका जीवन सफल है। प्यार भगवान से, व्यवहार अच्छी तरह से संसार से करो, लेकिन जिससे प्रेम है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहां नहीं आएंगे तो आपका प्रेम कम हो जाएगा, लेकिन प्रेम भगवान के साथ होना चाहिए, व्यवहार संसार के साथ होना चाहिए। तो शरण किसी और के नहीं जाना, ये देवताओं की शरण में जाते हैं। अतः मनुष्य शब्द, अब प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में जो मनुष्य शब्द है, अतः मनुष्य शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए आया है जो जीवन में असली लक्ष्य को नहीं जानता। एक और मनुष्य के साथ श्लोक कोई भगवद गीता में है, अवजानन्ति माम, क्या है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम। इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसे मूर्ख मनुष्य जैसा समझते हैं, भगवान को कोई लोग ऐसे ही समझते हैं जैसे ये ऑर्डिनरी आदमी है, हाँ सामान्य व्यक्ति है। तो वहां शब्द अवज्ञा करते हैं, तो यहां ये वही लोग हैं जो भगवान की अवज्ञा करते हैं, असली भगवान को नहीं जानते, इसलिए दूसरे के पास जाते हैं। अगर जानते तो क्यों जाते। तो सामान्य मनुष्य की प्रभुपाद जी परिभाषा क्या लिखते हैं, जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता। तो जीवन का असली लक्ष्य क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये वो नहीं जानता है कि हम कृष्ण के दास हैं, ये वो किसी का भी दास बनने के लिए तैयार है। और असल में आपको ईमानदार सच्ची बात कहें कि जितने मनुष्य हैं ना, उसमें एक भी दास बनने के लिए राजी नहीं है। कोई दास बनना चाहता है, यहां तक दीक्षा में नाम उसका दास देते हैं, फिर भी कभी अपने नाम के साथ दास नहीं बोलेगा, प्रभु बोलेगा। देख लिया, हाँ पूछो उसको नाम तो क्या कहेगा, दास नाम बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं ना। क्योंकि दास हम समझते हैं बहुत नीचे का स्तर है, दास हमको नहीं बनना है। लेकिन ये सबसे बड़ी उपाधि है दास, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है जितनी दास 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 अनुदास, दासों के दासों के दासों का दास हूं। आई एम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स। बोला दास दास अनुदास में क्या लाभ है। ये अब जाते हैं समुद्र घूमने जाते हैं, तो वहां दूर में जहाज दिखाने के लिए क्या देते हैं आपको, दूरबीनी देते हैं ना, वो उसमें दूर जहाज है वो दिखाई देता है ना, उसमें क्या होता है दूरबीनी में, कॉन्वेक्स लेंस। हाँ कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, मोटे मोटे शीशे होते हैं जो दूर की चीज को नजदीक कर देते हैं। ऐसे भगवान को देखना है जो दूर दिखाई दे रहा है, आपके और भगवान के बीच में मोटे मोटे कुछ भक्त होंगे तो भगवान नजदीक दिखाई देगा। ये मतलब ये भगवान को देखने की ये प्रक्रिया है। तो दास दास अनुदास, हम सेवकों के सेवक है लेकिन हम बनना नहीं चाहते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी लोग किसी न किसी का सेवक बने हुए हैं। भाई नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी की नौकरी तो कर ही रहे हैं ना। भाई कौन सी नौकरी सबको पसंद आती है, भाई सरकारी मिले तो अच्छी है कि प्राइवेट मिले तो अच्छी है। सरकारी का फायदा क्या है, पेंशन मिलती है, प्राइवेट में नहीं मिलती है ना, क्योंकि सरकार बड़ी है प्राइवेट छोटी है, तो बड़े की नौकरी करना आदमी ज्यादा पसंद करता है, तो सबसे बड़ा भगवान है उसकी नौकरी क्यों नहीं करते? उसकी पेंशन इस दुनिया में क्या मिलेगी, उसके बाद भी मिलेगी, तो उसकी नौकरी करना चाहिए ना। एक आदमी था सेवा करने के लिए आया, सेठ को कहा मैं आपकी सेवा करूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा, सेवा दिल से करूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर आपसे कोई बड़ा देखा तो उसके पास चला जाऊंगा। बोला ठीक है। सेवा मुफ्त में करता था, रोटी खाता था। एक दिन सेठ के पास कोई गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर आया, सेठ खड़ा होकर नमस्कार कर रहा था, आइए आइए बैठिए, उसका सेवा कर रहा था। इसने बोला मेरी नौकरी खत्म हुई, मैं इसके पास जाऊंगा। बोला आपसे बड़ा है? बोला ये तो ऑफिसर है, बड़ा है। बोला फिर मैं आप उस ऑफिसर के पास चला गया, कहा आपकी नौकरी करूंगा, तनख्वाह नहीं चाहिए, सेवा करूंगा, लेकिन आपसे कोई बड़ा आया तो आपको छोड़ के चलाऊंगा। बोला मैं सबसे बड़ा हूं, यहां का कमिश्नर हूं, कमिश्नर की सेवा कर रहा था, एक दिन मिनिस्टर आया तो कमिश्नर भी खड़ा है, सलूट कर रहा है। बोला ये आपसे बड़ा है? बोला हाँ, ये तो मंत्री है, तो छोड़ के बोला इसकी सेवा करने जा रहा हूं। मंत्री को कहा आपकी सेवा करूंगा, कुछ लेऊंगा नहीं, लेकिन आपसे बड़ा आया तो चला जाऊंगा। तो बोला मैं तो यहाँ का मंत्री हूँ, जाऊंगा। तो थोड़े दिन के उसको बुलाया मुख्यमंत्री ने, तो वो भी बेचारा लाइन में खड़ा है। बोला ये आपसे बड़ा है? बोला हाँ, तो बोला इसकी सेवा करता हूँ। उसको बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो भी खड़ा हो गया। एक दिन प्राइम मिनिस्टर के बाद एक साधु आया, तो प्राइम मिनिस्टर उठ के खड़े नमस्कार कर रहा है। बोला महाराज ये आपसे बड़ा है? बोला ये तो भगवान का सेवक है, हम तो दुनिया के सेवक है। तो फिर मैं इसके पास जाता हूँ, उसके पास जाए तो वो तो 7 बार भगवान को दंडवत करे। बोला ये आपसे बड़ा है? बोला हाँ, ये हमसे बड़ा है। बोला फिर इसकी सेवा करता हूँ। भाई सेवा ही करनी है तो ऐसे किसी की करनी चाहिए ना जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़े की सेवा करनी चाहिए, तो सेवा तो करनी है, उसके बगैर रह नहीं सकते। और प्रभुपाद जी तो बहुत कभी कभी कटाक्ष में कहते थे लोगों के पास सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं। हाँ, कहाँ गार्ड की सेवा छोड़ के डॉग की सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते। लक्ष्य क्या है? हम भगवान के नित्य कृष्ण के दास है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये चेतना महाप्रभु ने असल में उद्घाटन करके हमको बताया। नहीं तो देखो, हमारी संस्कृति में हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बेटे का नाम रख देते गोपाल दास, हाँ, गोविंद दास, श्याम दास, पीछे दास लगाते थे कि नहीं? लो, सब पुराने नाम ऐसे आपको मिलेंगे। तो वो समझते थे कि हम सेवक हैं, लेकिन अब सभी सेवा करते हैं लेकिन सेवक नहीं समझते हैं, तो वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लेकर, अब ऐसे व्यक्ति देखो, कोई ये मूर्खों की बात नहीं हो रही है, ये से लोग जो अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं वो कौन है? ऐसे व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लेकर भौतिक आनंद उठाना चाहते हैं, जहां शिक्षा, सौंदर्य तथा प्रचुर ऐश्वर्य भोगा जा सकता है, जो इस भौतिक संसार में वांछनीय है। ये 4 चीजें यहां बताई गई। कौन सी 4 चीजें? देखो क्या है, उच्च कुल में जन्म, पहले ये है ना। दूसरा क्या है? उच्च विद्या। तीसरा क्या है? सुंदर काया, सुंदर शरीर। चौथा क्या है? उच्च और ऐश्वर्य धन। इन चारों को कहते हैं नशा। इन चारों को क्या कहते हैं? मद। ये नारद जी कहते हैं उच्च कुल के जन्म का बड़ा नशा होता है, सुंदर काया का नशा होता है, बड़ी विद्या का नशा होता है और धन का नशा होता है। ये चारों नशे हैं। इसका मतलब जो लोग ये चीजें चाहते हैं वो कौन है? नशाई है। क्या है? क्योंकि ये बड़े से बड़ा नशा है। और कुंती महारानी कहते हैं ये 4 जिसके पास है वो भगवान को पा ही नहीं सकता है ना। ये कुंती महारानी श्लोक है ना, किसको याद है? क्या है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदम मानम मद आत्मा। उनको होता है नशा, इसलिए वो भगवान के शरण में नहीं जाते। और दुनिया वाले यही चाहते हैं। क्या विचार है? सभी यही चाहते हैं कि नहीं? और इन सब में कौन सा सबसे बड़ा नशा कौन सा है? नारद जी का शब्द है कि धन मद अंधा। धन का नशा सबसे बड़ा नशा है। सबसे बड़ा नशा है धन का नशा, और सब लोग दुनिया में यही चाहते हैं। अब ये प्रभुपाद जी लिखते हैं यही चाहते हैं, इसलिए किसके पास जाते हैं? देवता के पास जाते हैं। और जीवन के असली लक्ष्य को जो भूल चुका है वैसा व्यक्ति, तो ये क्या है, ये जीवन के असली लक्ष्य नहीं है। लोग यही चाहते हैं लेकिन ये जीवन का असली लक्ष्य नहीं है, लेकिन असली लक्ष्य को भी ढक देता है। असली लक्ष्य को भी ये चार चीजें ढक देती है। तो अब श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं वैसा व्यक्ति जो भूल चुका है अपने जीवन के लक्ष्य को, माया शक्ति अर्थात देवी दुर्गा की पूजा विविध कार्यों के लिए विविध स्थानों तथा नामों से कर सकता है। तो ये चार चीजें, वह चीजें जो भगवान अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानते हैं, ये देवी की पूजा करते हैं। माया देवी लिखा है। माया का क्या काम है? माया का दो काम है। माया का दो काम है, एक को कहते हैं असली चीज को ढक दे, उसके लिए संस्कृत शब्द है आवरण आत्मिक। क्या? आवरण का मतलब पर्दा। और दूसरा है जो असली नहीं है उसको दिखा दे, उसमें लुभा दे, उसके लिए संस्कृत शब्द है विक्षेप। क्या है? विक्षेप। विक्षेप का मतलब आपका मन असली से हटा के नकली में लगा दे। इसका उदाहरण पता है क्या है? सिनेमा हॉल। आप तो यहां रह रहे हैं, सब सिनेमा के अदाकार यहां रहते हैं ना, नेता, सिनेमा के अभिनेता। सिनेमा हॉल में जाते हैं किसके साथ जाते हैं भाई? अपने प्रेम मित्र के साथ जाएंगे, पत्नी के साथ जाएंगे, कोई अपने सगे संबंधी के साथ जाएंगे ना। जब सिनेमा भर जाता है तो पहला काम क्या करते हैं? लाइट सब बंद करते हैं। करते हैं? जिसके साथ आए थे वो दिखता है? हाँ, जिसके लिए खर्चा किया वो दिखता है, जिसका टिकट लिया वो दिखता है। और तब क्या करते हैं लाइट बंद करने के बाद? बड़े स्क्रीन के ऊपर एक सिनेमा चालू करते हैं। जिसके साथ आए थे वो भूल गए और जो उसमें है उसके साथ उसको अपना मान लिया। मान लेते हैं कि नहीं? फिर हीरो हीरोइन को ऐसा अपना मान लेते हैं कि उसको कष्ट आता है, हम रोने लगते हैं, हम रोते रहते हैं, और उसको कोई कष्ट नहीं आता है, वो पैसा कमा रहा है उधर। उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा पैसा भी गया और रोना भी मुफ्त का। और इंटरवल में याद आता है कि अरे मेरे साथ तो ये आया था, वह तो कुछ नहीं था, वह तो लाइट गई। ऐसे भगवान हमारे साथ आए हैं, हमारे सौहृद हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। माया ने उसके ऊपर पर्दा डल दिया और दुनिया के स्क्रीन का इतना बड़ा फिल्म चालू कर दिया, ये दुकान है, ये मकान है, ये पत्नी है, ये पति है, ये बेटा है, और उसमें इतने फंस गए, ये मरने वाली इंटरवल पे याद आएगा भगवान काम का है। उससे पहले आज याद ही नहीं आता। ये सच है कि नहीं है? ये माया का काम है और माया ऐसे करती है। तो ये माया के, ये सब माया के पूजा करने चाहते हैं क्योंकि माया चाहते हैं। एक माया के लिए दूसरा शब्द है, उसको कहते हैं पति पत्नी। जिसने शादी कर ली है पति के साथ, वो जब अपने मां बाप के घर जाती है उसको क्या बोलते हैं? मैका। क्या बोलते हैं? मैका। मैका में कोई पत्नी सुखी रह सकती है सारी उम्र के लिए शादी करने के बाद? हाँ माताओं, क्या आपका क्या विचार है, कहां सुखी रहेगी? अपने पति के घर ना। ये संसार सबका मैका है, ये माया का है, ये सबका मैका है। यहां सब घूमो फिरो लेकिन सुखी नहीं रह सकते, जब तक पति के घर वापस नहीं जाएंगे तब तक सब मैके में है। ये माया का है, इसका नाम ही माया का है, मैका, मायका, मायका। तो ये माया के संसार में कौन जाता है जिसको ये चार चीजें चाहिए? जिस तरह कृष्ण की पूजा हेतु भारत में अनेक पवित्र स्थान है, उसी तरह दुर्गा देवी या यशोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न माया देवी की पूजा के भी अनेक पवित्र स्थल हैं। प्रभुपाद जी बैलेंस बात कर रहे हैं कि कृष्ण के पूजा के स्थान है, बहुत बड़े पवित्र स्थान है, कौन सा? वृंदावन, जगन्नाथपुरी है, और कौन सा? अयोध्या, राम जी की नगरी। तो ऐसे बहुत से, तो ऐसे देवी के लिए भी पूजा के स्थान है, लेकिन यशोदा पुत्री यहां लिखा है। यशोदा के घर में अनुजा के रूप में प्रकट हुई थी कृष्ण के। ये एक कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि अनुजा कृष्ण की यशोदा के घर में पैदा हुई तो बड़ा भाई होगा, तब छोटी बहन होगी ना, बिना भाई के छोटी बहन हो सकती है क्या? इसका मतलब यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उसकी छोटी बहन ये माया, योग माया है, और उस योग माया को कंस लेके आया, देवकी के हाथ में दी, सॉरी वसुदेव लेके आया, देवकी के हाथ में दी, और देवकी से कंस छीन रहा था, देवकी नहीं दे रही थी, तो देवकी की उसमें बहुत ज्यादा ममता हो गई, इसलिए वो फिर देवकी के यहां सुभद्रा के रूप में प्रकट हुई। सुभद्रा के रूप में देवकी के यहां प्रकट हुई, तो कृष्ण की बहन है ना, लेकिन वो है कृष्ण की बहन, और आज भी जगन्नाथपुरी में कलरा बलराम और दोनों भाइयों के बीच में बैठी हुई है, वहां पूजित है। तो अब यहां एक दो मिनट और बात कर ले, समय तो ज्यादा हो गया, थोड़ा सा पढ़ के पूरा करना है, जरा सा परपट अब और है। एक महामाया, एक योग माया। महामाया भगवान के पीछे होती है, और भगवान के पीछे पाप होता है, और महामाया भगवान के पीछे होती है, सामने आदमी में लज्जित होती है, और महामाया का काम क्या है? जीवों को अपने वश में करके रखना। ये व्यास देव ने देखा था, भगवान को देखा, पूर्ण पुरुष भगवान को देखा, उनकी सारी शक्तियों को देखा, माया शक्ति को पीछे देखा, और माया शक्ति भगवान के पूरे वश में थी, लेकिन फिर व्यास देव ने जीव शक्ति को, जीवों को देखा जो माया में वश के वश में थे, और माया के वश में थे इसलिए अनर्थ कर रहे थे, और उस अनर्थ को मिटाने के लिए व्यास देव ने भागवत सातवत संहिता प्रकाशित किया। ये सातवें अध्याय का पहले स्कंद का वर्णन है। तो माया, महामाया कहां होती है? भगवान के पीछे। इसका मतलब जो भगवान से बेमुख है वो माया की गोद में गिरते हैं। योग माया भगवान के सामने, जो भक्त है वो योग माया के संरक्षण में है, देवीम प्रकृति माश्रता है। वो जो माया है वो विशेष भगवान की अंतरंग शक्ति है, दोनों शक्तियां हैं। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान एक है, उसकी शक्ति एक है। जैसे अच्छा इंजीनियर बिजली से हीटर भी चला सकता है और एयर कंडीशनर भी चला सकता है, ऐसे भगवान अपनी शक्ति कोई भी माया के रूप में या योग माया के रूप में, भक्तों के ऊपर भी प्रभाव होता है योग माया का, लेकिन संसारियों के ऊपर प्रभाव होता है माया का। तो यहां कहा गया है ऐसे लोग माया के शरण में जाते हैं, तो दुर्गा जी के भी ऐसे पवित्र स्थान है। कौन है ये? कल के श्लोक में आएगा, और उसके अंदर प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है कि वाराणसी में उसको क्या कहते हैं और कन्याकुमारी में क्या कहते हैं, और हर एक नाम का अर्थ है, ये कल आएगा, आप आएंगे तो सुनेंगे उसको। कंस को छलने के बाद, को कंस को किसने छला? जो अनुजा के रूप में प्रकट हुई, उसने कंस को धोखा दिया। कंस को छलने के बाद माया देवी सामान्य लोगों से नियमित पूजा कराने के लिए अनेक स्थानों में विशेष रूप से विंध्याचल में विकीर्ण हो गई। इसका मतलब वो जो कंस के हाथ से निकली थी ना, भगवान ने उसी को आशीर्वाद दिया था, वो विंध्या पर्वत, देखो एक हिमालय पर्वत एक विंध्या, इन दोनों के बीच में इसको आर्यावर्त कहते हैं। तो विंध्या पर्वत की तरफ देवी बहुत से स्थानों में जाके विराजमान हो गई, ये प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं। मनुष्य को तो वास्तव में आत्म तत्व अथवा आत्मा का सत्य तथा परमात्मा को जानने में रुचि रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहे जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्म तत्व को जानना और परमात्मा को जानना, उसमें रुचि रखनी चाहिए। बाकी चार चीजें हैं उसमें रुचि नहीं रखनी चाहिए, इसका मतलब ये, इनमें रुचि रखनी चाहिए। जो लोग आत्म तत्व में रुचि रखते हैं वे भगवान की पूजा करते हैं। यस्मिन विज्ञाते सर्वेम विज्ञात भवति। प्रभुपाद जी श्लोक लिखते हैं, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? एक भगवान को जानने से सबका पता लग जाता है, फिर और अलग किसी जगह नहीं जाया जाता। अभी समय नहीं है इसके लिए उदाहरण, तो कौन सा उदाहरण है? एक कृष्ण संतुष्ट हो गया तो दुर्वासा के 10,000 शिष्य स्नान करके ही पेट में क्या कह रहे थे, पेट भर गया, पेट भर गया, अब नहीं खा सकते। भीम कहता नहीं, चलना पड़ेगा, भोजन तैयार है, 10,000 लोगों का आपने ऑर्डर दिया है, प्रसाद तैयार है, अब कैंसिल नहीं होगा। नहीं नहीं हमारे को नहीं, अभी खा नहीं सकते हैं। और दुर्वासा को मालूम है कि भक्तों के अपराध में पहले भी चक्कर हमारे पीछे पड़ गया था। अरे भीमसेन जो वरदान चाहिए वो मांग ले, भोजन नहीं करेंगे। भीमसेन ने कहा अच्छा मौका मिला, एक वरदान दे दो। बोला क्या वरदान? बोला पहला वरदान ये दो, मेरे को खाना बहुत खाना की इच्छा होती है, मैं हूं ज्यादा खाने वाला, लेकिन ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा टॉयलेट जाना पड़ता है वॉशरूम में। अब मेरे को दुख देने में सब शकुनी की शरारत है, इसलिए खाऊं मैं और सोच शकनी जाए। ये आशीर्वाद दे दो। दुर्वासा ने कहा तथा अस्तु। फिर कहा आपका वन का काल अच्छा गुजरेगा। भीमसेन सीधा गया, बोला मैं हम तो वनवास में जा नहीं सकते, किसी को बोला 1 किलो लाल मिर्ची लेके आओ बाजार से, और फिर उसको घोट के पिया, फिर क्या हुआ होगा शकनी का आप सोचो। तो एक भगवान को संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए एक भगवान का शरण लेना चाहिए, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। फिर भी जैसा कि इस अध्याय के अगले श्लोक में बताया गया है, जो लोग आत्म तत्व को नहीं समझ सकते, अपश्यताम आत्म तत्वम, जो आत्म तत्व को नहीं समझ सकते वे योग माया के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, क्योंकि प्रभुपाद जी आत्म तत्व आ गया है तो आत्म तत्व के ऊपर ये श्लोक कह रहे हैं। वो ये श्लोक कैसा है, ये श्लोक कौन बोल रहा है, जरा बोलिए। ये सुखदेव महाराज बोल रहे हैं, और कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दुनिया में। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, श्रोत्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम। जो कामनाओं से घिरे हुए, जिनको ग्रह लगा हुआ है, आग्रह करके ग्रह में अटके हुए हैं, वो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत विषय है और बहुत लोगों का शरण देते हैं। लेकिन जो आत्म तत्व को जानते हैं वो केवल भगवान के ही शरण में जाते हैं। तो ये श्लोक यहां पूरा होना चाहिए ना। हाँ, तो हे राजन, जो लोग भौतिक संसार में फंसे हैं ग्रह मेदी, वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होने से मानव समाज में अनेक प्रकार के विषयों को सुनते रहते हैं। अनेक प्रकार के विषय आए तब कौन सा श्लोक याद आना चाहिए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखाय अनंतास बुद्धो व्यवसाय नाम। तो एकाग्र चित्त वाले हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, और जिनका चित्त कई शाखाओं में बटा हुआ है वो किसी की भी पूजा करते हैं। देवता की पूजा भी आजकल लोग कम करते हैं, आजकल भूतों की पूजा ज्यादा करते हैं। भूतों का मतलब 5 भूतों के अलावा शरीर वाले जो ये मंत्री अंतरतंत्री होते हैं, इनके चेले बहुत होते हैं, बाहर देवताओं के भी बहुत कम हो गए हैं आजकल। तो देवताओं से भूत की पूजा वाले ज्यादा हैं। देवता की पूजा वाले देव शरीर में देवलोक में जाएंगे, भूत की पूजा करने वाले तो ये हम कभी कभी बोलेंगे भूत का मतलब एक तो वो भूत है जिनको शरीर नहीं है, लेकिन एक शरीर वाले भूत हैं उसके पुजारी बहुत हैं। ये भूत बहुत बड़े भूत हैं भाई। जो लोग इस भौतिक संसार में बने रहना चाहते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि नहीं रखते, उनके पास करने के लिए अनेक कार्य होते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि रखता है उसका एकमात्र कार्य होता है कि वो पूरी तरह कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले। सर्वधर्मान परित्यजमाम एकम शरणम व्रज। ऐसा व्यक्ति भौतिक भोग में रुचि नहीं रखता। तो अनेक जगहों में जाने वाला जो इस संसार में रहना चाहता है, एक भोजन के लिए संस्कृत के कवि ने कविता कही है, वो कह के कथा को पूरा करते हैं। कहीं भोजन देखा पराए घर में बहुत ज्यादा सजा हुआ तो अपने आप को कहते हैं, भुंक्ष्व खाओ, मां दया करू, अपने ऊपर दया मत करो, पर अनम दुर्लभम, पराया माल मुलना मुफ्त है, शरीरामी पुनः पुनः, ये शरीर तो बार बार मिल जाएगा, इसमें क्या है, दबा के खाओ, पराया माल मुफ्त में मिलता है, दया मत करो शरीर के ऊपर, मरना है तो कोई बात नहीं, दोबारा शरीर मिल जाएगा लेकिन माल नहीं मिलेगा। भुंक्ष मां दया करो, पर अनम दुर्लभम शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाएगा। तो जो जो ऐसे ऐसे सोच वाले हैं कि यही सब कुछ शरीर, वो कहते हैं दुनिया में ही रहना है, जाना कहीं नहीं है। जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं वो केवल भगवान की शरण लेते हैं, और दुनिया में सुख सुविधा चाहते हैं और घूम फिर के वापस दुनिया में आना चाहते हैं, वो किसी की भी शरण ले लेते हैं, देवी देवता की तो बहुत फिर भी अच्छा है, किसी की भी शरण लेते। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो कथा का समय पूरा हो गया है, बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कथा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये क्यों खड़ा है पता है, इसने हमको देखा कि आज गीता आपके बराबर जो तोलेगा उसका तो मुक्ति का रास्ता खुला हुआ है।
हरे कृष्णा।
और कितने तोलना, जितने 10 तोलना चाहे, मैं 10 के लिए बैठने को तैयार हूं, लेकिन 10 तो मुक्त हो जाए, कुछ तो कमी हो यहाँ।